ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। बच्चे, अपने अंदर अवगुणों को चेक करो। चलो, कलयुग है, तुम गुणों को नहीं चेक कर सकते, हर्जा नहीं, पर अवगुणों को तो चेक कर सकते हो ना, कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं, पता पड़ सकते हैं ना, तुम्हें तुरंत दिखेंगे कलयुग में। अगर तुम्हें लगता है तुमने कोई गुण धारण नहीं किए हैं, हर जाने, पर क्या क्या अवगुण अंदर है वो तो चेक करो, क्योंकि जब अवगुणों की खबर लग जाएगी तो गुण अपने आप आ जाएंगे। गुणों को तुम ऐसे ही नहीं ला सकते, गुणों को लाने के लिए अवगुणों को निकालना पड़ेगा, कोई एक जगह खाली करनी पड़ेगी तब वह भर सकते हैं। दूसरी बात से, अवगुण निकालेंगे तब गुण भरेंगे, दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते, समझ की बात है। ऐसे नहीं हो सकता कि अंदर अशांति रहे और तुम कहो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। पहले अशांति को समाप्त करना पड़ेगा, अशांति का अवगुण है वो छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, फिर तुम कहोगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं तो अनुभूति होती जाएगी, समझ की बात है। ऐसे तो नहीं होता ना कि मटके के अंदर कचरा है और उसमें पानी भरा जाता है, पहले कचरा निकाला जाता है, मटके को धोया जाता है, खाली किया जाता है, फिर उसके अंदर शुद्ध जल भरा जाता है। कचरे के साथ जल भरोगे तो पीने में भी तो कचरा जाएगा, इसलिए पहले सफाई की जाती, क्लीनिंग की जाती, फिर गुण भरे जाते। क्लीनिंग करना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य है, बहुत आसान। भले चार्जिंग करने में, गुण भरने में समय लगता हो, लेकिन क्लीनिंग में समय नहीं लगता, समझ की बात। जैसे तुम्हें पता पड़ा ये अवगुण तुम्हारे अंदर है, वो समाप्त हो जाता, क्लीन हो जाता। पर पता तो पड़ना चाहिए कि तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, पर तुम स्वीकार ही नहीं करते कि तुम्हारे अंदर है। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो वो निकलेगा कैसे? डॉक्टर को बताओ तो सही कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, जैसे बता दिया बीमारी निकाल देगा डॉक्टर? तुम खुद ही तुम्हारे डॉक्टर हो, कोई और डॉक्टर नहीं है। बाबा तुम्हें गाइड कर रहा है कि सर्जरी कैसे करनी है, मुख्य सर्जन साथ में खड़ा है, पर तुम्हें ही तुम्हारी सर्जरी करनी है, तुम्हें ही तुम्हारा ऑपरेशन करना है, बाप नहीं करेगा। बाप बस ज्ञान देता है ऑपरेशन करने का, सर्जरी करने का, इसलिए तुम ही तुम्हारे डॉक्टर हो। तुम्हें खुद को ही पता होना चाहिए तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है, बस पता चला बीमारी निकल गई, समय नहीं लगेगा बीमारी निकालने में, समझ की बात है। तो बच्चे, इस बात पर ध्यान दो, अपनी चेकिंग करते रहो बार बार कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, चेकिंग करते रहो। गुण कौन से आए बाबा कहते छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, अवगुण भरे हुए हैं और उस घड़ी तुम गुणों की चेकिंग करोगे अहंकार आ जाएगा। अशुद्धि के साथ शुद्ध को अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो जरा सी शुद्धि से तुम्हें लगेगा हाँ हम बड़े पवित्र हैं, बड़े शुद्ध हैं, अहंकार आ जाएगा। इसलिए अवगुणों के साथ गुणों की चेकिंग नहीं करना, पहले अवगुणों को समाप्त करना, तुम्हें गुण अपने आप दिखेंगे। कचरा निकालने के बाद पानी स्वच्छ है ये अपने आप दिखेगा, और उसका अनुभव भी करेंगे पानी पी के, प्यास बुझ जाएगी। स्वच्छता अनुभव होगी। समझ के बात है। तो बच्चे एकांत में बैठकर चेक करो मेरे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके मैं अवगुणी हूँ। रावण को भी लगता होगा कि मैं गुणवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। किसी को नहीं लगता कि उसके अंदर कोई अवगुण है, जैसे कि हर किसी को यही लगता है कि मैं गुणवान हूँ। गुणवान ही लगते हैं उसको, हर कोई अपने आप को अनुभव होते कि मैं गुणवान हूँ। दूसरे अवगुणी दिखते हैं, दूसरे अवगुणी दिखते हैं और खुद गुणवान लगते हैं, ऐसे होता है। इसलिए बाबा कहते हैं चेकिंग करो और अवगुणों को समाप्त करो। है इसीलिए तो बाबा कह रहा है, नहीं होते तो बाबा क्यों कहता। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। जैसे अवगुणों को निकाल दिया, साफ दिल बन गए। बनने में समय नहीं लगता। साफ दिल, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो। देखिए दो गुण महत्वपूर्ण है, एक सच्चाई और दूसरा पवित्रता। ये दो गुण जब तुम धारण करोगे अवगुणों को निकाल कर, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। बच्चे सेवा में सफलता चाहते हैं ना, तो सच्चाई और पवित्रता, इन दो गुणों के बिगर सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। समझ की बात है। तुम अपवित्र रहकर सेवा में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? मैं तो पवित्रता की दुनिया ला रहा हूँ, सतयुग ला रहा हूँ, जहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। अपवित्रता मना सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, काम विकार की बात नहीं है, हर रूप से किसी के प्रति तुम्हारी वृत्ति अशुद्ध है, मना तुम अपवित्र हो। किसी के लिए तुम अशुद्ध विचार दूसरों के सामने रखते हो या खुद करते हो, मना तुम अपवित्र हो। किसी के लिए गलत दृष्टि है, गलत दृष्टि मना सिर्फ काम विकार की दृष्टि नहीं होती, गलत दृष्टि मना ये ठीक नहीं है व्यक्ति, वो ठीक नहीं, ये ऐसे ही, वो वैसे ही, ये गलत दृष्टि है तुम्हारी उनके ऊपर, अपवित्रता है। किसी के लिए गलत बोल है, फिर वो मनुष्य के लिए हो, आत्मा के लिए हो, जीव के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, तत्वों के लिए हो या ड्रामा के लिए हो, तुम्हारे मुख से गलत बोल निकलते मना तुम अपवित्र हो। ध्यान में रखना, पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं बांधना, इन सारी बातों को भी चेक करना। और रहे कर्म की बात, तुम्हारे गलत कर्म हो रहे किसी को लेकर, अपवित्रता है अंदर। समझ की बात, तुम कायदों में चलते हो मना तुम पवित्र हो। इस कर्मों की परिभाषा बहुत बड़ी है, पवित्र कर्मों की परिभाषा। तुम अगर ऐसे उठ बैठ रहे हो जिससे किसी को तकलीफ नहीं है, तुम्हारे उठने बैठने से मना तुम पवित्र हो। तुम्हारे उठक बैठे बैठक से, उठने बैठने से किसी और को तकलीफ हो रही, मना तुम अपवित्र हो। समझ की बात है। तुम्हारे हर कर्म से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा तुम कर्म से भी पवित्र हो, किसी भी कर्म से। समझ की बात है। जहां तुमसे किसी को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तुम अपवित्र हो उस घड़ी। ध्यान देना, तुम समय पर उठे नहीं, तुम्हारी सेवा है और तुमने सबकी व्यवस्था की नहीं, तुम अपवित्र हो। तुम्हारी ड्यूटी थी ना समय पर उठना और सबकी सेवा करना, तुमने नहीं की, तुम कारण दे रहे हो। कारण अगर ठीक नहीं है तो तुम अपवित्र हो। हाँ, कारण ऐसी कोई बात है, शरीर बीमार पड़ गया या फिर तकलीफ है शारीरिक रूप से, तो बाबा कहते ठीक है, पर बाकी कोई कारण जो है वो कारण मना अपवित्रता है। समझ की बात। तुम कहते हो फलाने के लिए हमारे मुख से ऐसे बोल निकल गया, हम तो मस्ती कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, पर किस रूप से? गुणों का मजाक किया तुमने, किसी के अवगुणों का मजाक उड़ाया ना, तुम अपवित्र हो। किसी की ग्लानि ही की ना तुमने, फलाने ऐसे फलाने वैसे, तुम अपवित्र हो। सिंपल सी बात, मजाक में भी क्यों ना, पर तुमने किसी की मना ग्लानि ही की, किसी को गाली ही दी, मना तुम अपवित्र हो। ध्यान देना इस बात को लेकर, मजाक में ही सही पर ड्रामा को तुमने रिजेक्ट किया, तुम अपवित्र हो। तुम्हारी दृष्टि में यह सारी सृष्टि अच्छी नजर नहीं आती, तुम्हें लगता ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। व्यक्तियों की बात नहीं, वस्तुओं की भी बात है, समझ की बात है। हर रूप से तुम्हें जहां जहां जो जो ठीक नहीं लग रहा है, मना तुम्हारी दृष्टि अपवित्र है। वो वैसे रही है, ड्रामा की मर्जी है। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें वो ठीक नहीं लग रहा है, समझ की बात है। कोई फल है जो सड़ रहा है और उस घड़ी तुम कहते हो ये खराब है फल, घृणा से कहते हो, तुम्हारी दृष्टि अपवित्र है। अपवित्र है, सड़ना उसका पार्ट है, सड़ना उसका ड्रामा है, उसी जगह पर, इसलिए गायन है। सन्यासी वही जिसके लिए चंदन की सुगंध और विष्ठा की सुगंध एक समान है, उसे सन्यासी कहा जाता है। ध्यान में रखना, जो इसमें अंतर करता है वो सन्यासी नहीं है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम किसी सुगंध के पीछे लगो, पर तुम्हारी स्थिति दोनों में एक समान रहे वो सन्यासी है, सच्चा सन्यासी। इसमें अगर तुम अंतर कर रहे हो, ये अच्छा है ये बुरा है, तुम सन्यासी नहीं हो। ध्यान में रखना, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारी स्थिति दोनों में समान रहनी चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते पवित्रता को देखो, दृष्टि को, तुम्हारी दृष्टि में अपवित्रता है। बस देह को काम विकार की दृष्टि से देखे वो अपवित्रता नहीं है, वो तो एक पार्ट है बाबा कहते, पर तुम सारी सृष्टि को गलत दृष्टि से देख रहे हो, वो सारी अपवित्रता है। समझ की बात है। अभी तुम अपने आप को चेक करो, फिर विचार, तुम्हारे विचार क्या चलते हैं सबके प्रति, अशुद्ध चलते हैं विचार। तुम अकेले करते रहते हो या वही विचार तुम बोल से किसी और के सामने रखते हो। अशुद्ध विचार सुनना भी पाप है, इसलिए ध्यान में रखना। जब कोई किसी की ग्लानी कर रहा हो तुम उसे कहना, या तो आप ये ग्लानी बंद करो या फिर हम उठ के चले जाते हैं। बड़े नम्रता से प्रेम से कहना, पर हमें श्रीमत है ये सुनना नहीं है ग्लानी, इससे अच्छा बाप को याद करो। ये ग्लानी जो करते हो ना उसी से तुम गिरते हो, इसलिए सन्यास मार्ग में अध्यात्म की राह पर मुख को मौन में रखा जाता है। जिसका मुख मौन में है वही सन्यासी है, वही योगी है। और अगर मुख खोले तो रतन निकले, सुख देने वाले। ध्यान में रखना, इसलिए बच्चे ध्यान दे इस बात पर, तुम्हारे विचार कैसे दूसरों के प्रति, उससे पता चलेगा तुम पवित्र हो या अपवित्र हो। फिर रही बात वृत्ति की, वो तो बहुत गहन अवस्था में बैठी है वृत्ति, गहराई में बैठी है। तुम चेक करो तुम्हारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, तुम्हारी एनर्जी कैसे, दूसरों को सुख देने वाली है या दूसरों को परेशान करने वाली है। तुम्हारी उपस्थिति में लोग परेशान होते या उन्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हारी वृत्ति है दूसरों के प्रति, वो तुम्हारे वाइब्रेशंस हैं। तुम चेक करो, बाबा कहते कारण कुछ भी हो, अगर तुम्हारी उपस्थिति में लोग परेशान हो रहे तुम अपवित्र हो, पक्के अपवित्र हो, क्योंकि वृत्ति सबसे ज्यादा दुख देती है, वाइब्रेशंस परेशान करते इंसान को, तुम्हारी उपस्थिति में सुख मिलना चाहिए सभी को। ध्यान दो इस बात पर, ये जब गुण धारण करोगे सच्चाई और पवित्रता, एक तो बाप से सच्चे रहो, सभी से सच्चे रहो और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलेगी, वरना सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, सेवा में सफलता चाहते हो तो ये करो, सच्चाई और पवित्रता, इसी से सेवा का और सेवा की सफलता का ताज तुम्हारे सिर पर होता है, बाप रखता है। बाबा कहते ये चाहिए। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है, कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं दूर देश के, अब पराये देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं यह पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ की किसी भी चीज को मेरा मेरा नहीं कहना, सब रावण का है। तुम्हारा कुछ नहीं, बाबा खुद कहता है मेरा भी नहीं है तो तुम्हारा कहाँ से बनेगा? सब कुछ रावण का है। रावण की चीज को तुम मेरा कहोगे? रावण की हर चीज में दुख है, हर कण में दुख है, इसलिए मेरा मेरा नहीं कहना। रावण की प्रॉपर्टी है दुख, राम की प्रॉपर्टी है सुख। रावण की प्रॉपर्टी को कहोगे ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वही तुम्हें दुख देगा। इस कलयुग में तुम्हें कौन दुखी कर रहा है? जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, फिर वो रिश्ता हो, घर हो, गाड़ी हो, नौकरी धंधा हो, पदार्थ हो। जिसे तुमने मेरा कहा बाप छोड़ के, बाप तो कलयुग का है नहीं, बाप संगम युग का है। बाप छोड़ के जिसे तुमने मेरा कहा वहां से तुम्हें दुख मिलेगा। और तुम कहो ना कहो मेरा, पर तुम जिसे मेरा मानते हो मन ही मन, बुद्धि में संस्कारों में पकड़ के रखा ये मेरा मेरा मेरा, दुख निश्चित है। बाबा कहते लिख के लो, रावण राज्य है, दुख मिलना ही है, दुख से कोई छूट नहीं सकता। यहाँ पर जो मेरा कहेगा वो डूबेगा। शरीर को भी तन को भी मेरा नहीं कह सकते, भल तुम उसे सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो, निमित्त बना के चला रहे हो, पर इस तन को भी तुम्हारा ही तन है, मेरा नहीं कह सकते। तन को मेरा कहा कि उस तन में बीमारियां शुरू हो गई, ध्यान में रखना। मन को मेरा कहा कि मन अस्वस्थ होगा, चंचल होगा। बुद्धि को मेरा कहा बुद्धि अस्थिर होगी। संस्कार मेरे मेरे कहे कि विपरीत संस्कार निकलेंगे। यह सिर्फ मेरा है तो वो बाबा है और कुछ भी नहीं, ध्यान में रखना। किसी और बात को अपने मेरा कहा कि गए आप, गए काम से, बाबा कहते माया खलास कर देगी तुम्हें। इसलिए बच्चे कहते नहीं कुछ, बच्चे पर मन में पकड़ के रखा है ये मेरा ये मेरा। बाबा ऐसे उठा के कहे ये चीज किसकी है, बच्चे कहेंगे हाँ मेरी मेरी है बाबा, है ना मेरापन। बस माया को वही धागा चाहिए, मेरेपन का धागा चाहिए। मेरेपन से माया तुम्हें मैंपन के देह अहंकार में लेके आती है। तुम यहां प्रकृति को मेरा कहे कि देह अभिमान में फंस गए, इसलिए सिर्फ बाबा को कहना मेरा, बाकी कोई मेरा नहीं। बाकी किसी चीज को मेरा कहा कि तुम मरा, मेरा मना मरा माया के हाथों। मेरा कहना है सिर्फ बाप को कहना, समझ की बात है। पराया देश है, पराया राज्य है। विजय से बाबा कहते यहां बैठे हैं, कह सकते हैं स्थान को ये हमारा है, नहीं पता है हम मेहमान हैं, किसी और का है। दुनियावी हिसाब से उसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम जहां भी रहते हो, तुम्हें किसने कहा? कागज पर बल तुम्हारा नाम है, पर कहा किसने ये तुम्हारा है? किसी और का नाम ट्रांसफर होके तुम्हारा नाम लग गया है, तुम्हारा नाम ट्रांसफर होके फिर किसी और का नाम लगेगा, ध्यान में रखना। यह तुम्हारा कुछ भी नहीं है, शरीर भी मिट्टी में चला जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, शरीर तुम्हारा नहीं तो बाकी क्या तुम्हारा है? यहां पर किसी और से तुमने लिया है, ये तुम्हारा नहीं है, किसी और को देना पड़ेगा। नहीं दे सकते तो विनाश काल में चला जाएगा, पर यह तुम्हारा कुछ भी नहीं सिवाय बाप के, ध्यान में रखना। और कभी कल्पना में भी नहीं लाना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, गिर जाओगे। सिर्फ बाप है तुम्हारा, दुर्गति में नहीं जाना। बाबा कहते सदगति में रहना, जिसने ये कहा, माना, समझा, अनुभव किया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उसी की सदगति हो सकती, बाकी सबकी दुर्गति होगी, ध्यान में रखना। ये रावण राज्य हमारा कुछ नहीं, शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है, यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है, आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी है, तो मंदिर में आदिदेव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य, जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बीके नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था, उनमें सच्चाई पवित्रता थी। बच्चे इस बात को समझो, इस बात को समझो कि मम्मा में सच्चाई और सफाई थी, इसके कारण तीर लगता था। बच्चे समझे इस चीज को, सच्चाई और पवित्रता के कारण तीर लगता है, सच्चाई, सफाई, पवित्रता। वरना तुम किसे भी ज्ञान समझाओ समझ में नहीं आएगा अगर सच्चाई नहीं है तो। समझ की बातें बाबा कहते हैं, सच्चाई चाहिए, पवित्रता चाहिए। अगर किसी को ज्ञान देना है, समझाना है ध्यान से, तो तुम्हें लगता है तुम एक बार ज्ञान दो और कोई सामने वाला समझ जाए, तो सच्चाई और पवित्रता चाहिए। पवित्रता के बल के बिगर ये विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। पवित्रता चाहिए, वो भी वृत्ति विचार दृष्टि बोल और कर्म में, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं, सभी की पवित्रता चाहिए बाबा को। अंश मात्र भी अशुद्धता हो तुमसे मैं विश्व कल्याण का कार्य नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। अंश मात्र भी इस दुनिया में एक कण के लिए भी तुम्हारे मन में अशुद्धि है, मैं तुम्हें निमित्त नहीं बना सकता विश्व परिवर्तन के कार्य में। एक कण में भी, एक कण के लिए भी अशुद्धि है तुम्हारे मन में। आत्मा तो छोड़ दो, बाबा कहते दुनिया में जितनी आत्माएं जितने मनुष्य हैं उनमें से किसी एक मनुष्य के लिए भी नफरत है तुम्हारे मन में जरा भी, फिर भी मैं तुम्हें निमित्त नहीं बना सकता विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए, ध्यान रखना। जब सभी के प्रति पूरा पूरा स्नेह प्यार प्रेम होगा, पूरा पूरा 100%, जितना बाप के लिए उतना सभी के लिए, तब ही तुम निमित्त बन सकोगे विश्व परिवर्तन के कार्य में। किसी के प्रति तुमने कुछ पकड़ के रखा है ना, तुम चलते रहोगे, बाप के मददगार बनोगे, निमित्त नहीं बन पाओगे विश्व परिवर्तन के कार्य में, ध्यान देना। अगर निमित्त बनना चाहते हो तो पूरी सफाई रखो अपनी, सच्चाई रखो अंदर और पवित्रता को धारण करो सारे विश्व के प्रति, ड्रामा के प्रति, सभी के प्रति। अपकारी पर भी उपकार करो बाबा कहते हैं, पत्थर मारने वाले को भी फूल दे सकते हो तो तुम विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन सकते हो, वरना बाबा कहते मुश्किल है। छोड़ो बात, तुम चलते रहोगे, छोटी मोटी व्यवस्था करते रहोगे, छोटा मोटा कार्य करते रहोगे, पर विश्व परिवर्तन के लिए मददगार नहीं बन पाओगे। अपना छोटा सा सेंटर संभालते रहोगे, एक गांव को ज्ञान देते रहोगे, एक सिटी को ज्ञान देते रहोगे, बड़े रूप से मैं निमित्त नहीं बना सकता, मुझे पूरा क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए हर रूप से, मम्मा के जैसा, तभी मैं निमित्त बनाता हूँ। जरा भी अशुद्धि है बाबा कहते नहीं, तुम साथ दोगे पर निमित्त नहीं बनोगे। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई और पवित्रता को धारण करो तो तुम निमित्त बन पाओगे। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी, मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना, पहले तुम बेसमझते, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं, यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है, यह बेहद का पुराना झाड़ है, बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का संन्यास कोई करा न सके, वह हद का संन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, इसलिए बेहद के बाप और वरसे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदम शुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं, तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक हैं, बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है। परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता, निराकार को कैसे कह सकते। इसमें उसने प्रवेश किया है तो यह माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि यह हमारे फॉलोअर्स हैं। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। बंधु भी हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमारी कुवारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, वह श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वह श्री कृष्ण कैसे आए। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह शाम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो यह दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। समझ की बात है। जो बच्चे पवित्र रहना चाहते हैं हर रूप से, जितने बाबा ने अभी बताए, बाप सब में ताकत देने के लिए तैयार है, पर एक कदम तो उठाओ। तुम कदम उठाओगे तो मैं मदद करूंगा ना। समझ की बात है। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। पर बच्चे हिम्मत तो करे, एक कदम उठाए, बाप 1000 कदमों से मदद कर देगा। पर बच्चे ही नहीं छूटना चाहते अपवित्रता से, तो बाप क्यों जबरदस्ती छोड़े या उनको निकाले वहां से। बच्चे एक कदम तो उठाओ, एक पत्र तो लिख के दो, किस रूप की पवित्रता तुम धारण करना चाहते हो, फिर देखो मैं कराता हूं या नहीं कराता हूं। पर दिल से लिखूं, सच्चाई से लिखूं, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से नहीं लिखना, समझ की बातें हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते। दो प्रकार के बच्चे, किस पर राहु की दशा बैठती है तो ज्ञान छोड़कर चले जाते, और दूसरे बच्चे अभी लोक लाज के कारण ज्ञान नहीं छोड़ सकते तो वहां ही रहते लेकिन करते कुछ नहीं। ये भी जैसे मर गए, दूसरे बच्चे वहां ही रहते बाप के साथ लेकिन मरे हुए मुर्दा जैसे, न श्रीमत पर चलेंगे, न मुरली सुनेंगे, न योग करेंगे, बस मुर्दा जैसे चलते रहेंगे। न बाप को समझेंगे, न अपने को समझेंगे, न योग करेंगे, न बाप से योग लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस चलते रहते, खाते पीते रहते। लगता है कि अभी सफेद वस्त्र पहन लिया, अभी अगर ज्ञान छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, इससे अच्छा यही रहते। ऐसे बच्चे, और कोई एक बच्चे है जो छोड़ के चले जाते, समझ की बात। देखिए इसमें उल्टी बातें बताते हैं, सीधी समझना। जो हिम्मत करके छोड़ के गया ना, उन्हें वापस बाप लाएगा, ये बाप की जिम्मेवारी, बाप के वचन है। पर जो रुके हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, वो छोड़ के चले जाएंगे, माया उन्हें निकाल देगी, ध्यान में रखना। उन्होंने दिल साफ रखी ना अपनी, जो छोड़ के गए कि नहीं जमता हमसे, नहीं हो रहा हमसे, हम छोड़ रहे ज्ञान। सच्ची दिल रही ना, फिर भी जो है जैसे है, सच्चे रहे ना, छोड़ दिया ना ज्ञान। बाबा ये नहीं कहता कि तुम ज्ञान छोड़, उल्टा नहीं समझना। पर वो जो है जैसे बाप के सामने सच्चे रहे, और तुम हो, एक लेटर भी लिख के नहीं दे सकते कि बाबा हमें ये सहन नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम मुरली नहीं कर पा रहे, अमृत वेले नहीं उठ पा रहे, योग नहीं हो रहा है। बाप कहता है ना, मैं बैठा हूं ना करने के लिए, पर तुम मुझसे सच्चे रहते ही नहीं, तुम्हारा पत्ता 100% कट होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि तुम मुझसे सच्चे नहीं रहते। वो सच्चे रहे, कह कि नहीं हमसे होता, हम ज्ञान छोड़ रहे। बाबा कहते तुम सच्चे हो ना, मैं लाऊंगा तुम्हें वापस ज्ञान में अंत समय में, चिंता नहीं करना, समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते बाप से हमेशा सच्चे रहो, जो हो जैसे हो सच्चे रहो, बाकी बाप बैठा है। लायक हो या उससे विपरीत हो, बस बाप से सच्चे रहो, बाप बैठा है तुम्हें साथ रखने के लिए, पर सच्चे रहो। पुरानी दुनिया में कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं, दशाएं फिरती रहती है, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं, अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया, यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो, यह बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल, कितने मकान चाहिए? ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी ज़रूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी, तुम सिर्फ काम करो, पैसे छमछम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे, कुछ देह अभिमान रहता है। बाबा कहते हैं सर्विस करने के लिए पहले आत्माभिमानी बनो, जब तक तुम आत्माभिमानी नहीं बने सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस का पहला साधन है, पहली स्टेप है आत्माभिमानी अवस्था। सर्विस और आत्माभिमानी अवस्था, इनका बड़ा कनेक्शन। तुम देह समझ के कैसे आत्मा को ज्ञान दे सकते हो? देह अभिमानी रहकर आत्माभिमानी का ज्ञान कैसे दे सकते हो? बाबा कहते पॉसिबल नहीं है, तुम्हें आत्माभिमानी बनना पड़ेगा, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में आना पड़ेगा, तब जाके तुम ज्ञान दे सकते हो, वरना तुमसे ज्ञान नहीं निकलेगा। तुम देह अभिमानी, दूसरों को ज्ञान देकर उनको भी तो देह अभिमानी ही बना दोगे, फिर थोड़ी आत्माभिमानी बनाओगे। तुम अगर आत्मा का ज्ञान देना चाहते हो तो आत्माभिमानी बनो, समझ की बात है, पहले धारण करो फिर बताओ, वरना नहीं होगा। बाबा कहते ध्यान दो इस बात पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। जब बाप को भूले तुम नास्तिक बन गए, ध्यान में रखना, बाप को याद किया अस्तिक बने। दो नंबर, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है, विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है पूरे विश्व की, ध्यान में रखना। वरदान है दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवन। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा, इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थ बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। हर बात में श्रीमत है, तुम छोड़ नहीं सकते श्रीमत को। श्रीमत छूटी कि तुम गिर गए। ध्यान में रखना, इस राह पर चलना मना 360 into 360 degree श्रीमत को ध्यान में रखना, यह राह है। और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास श्रीमत पर चलने बिगर, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, एक नंबर, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, वा तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दो नंबर, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, मना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया ये दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।
वाहे मेरा भाग्य, वाहे मेरा ऐश्वर्य परिवार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। अच्छा, ओम शांति। मीरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।